आज हमारे बीच में पदम परम आदरणीय सुषमा दीदी जी पधारे हैं। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। आप बचपन से ही अपने परिवार सहित इस ज्ञान से जुड़े हैं एवं लास्ट 50 ईयर्स से 50 साल से आप ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं समर्पित रूप से। आप जयपुर सब जोन के इंचार्ज हैं। आप कुशल संचालक तो हैं ही लेकिन साथ साथ कुशल वक्ता भी हैं, इसलिए देश विदेश में आप सेवाओं अर्थ जाते रहते हैं। मधुबन तपोवन इस भूमि पर जब भी भट्टियां होती हैं, चाहे भाई बहनों की, चाहे टीचर्स बहनों की, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग, आप उसमें सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं। और आप साथ साथ जितना ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझाते हैं उतना ही योग की गहराइयों में, साइलेंस की गहराइयों में भी आत्माओं को उतार देते हैं। आपके पीएम टीवी पर भी प्रोग्राम आते हैं तो आपके जीवन से अनेक आत्माओं का जीवन बना है, अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। ऐसी आदरणीय ओज तेज से भरपूर सुषमा दीदी जी का आज विषय रहेगा वर्तमान समय की परिस्थितियां एवं सुस्थिति। आदरणीय सुषमा दीदी जी।
ओम शांति। बाबा की वरदान भूमि तपो भूमि पर हम सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए बाबा के घर में पहुंच गए हैं। बाबा का घर है या अपना घर भी है, क्या कहेंगे? बाबा का घर है या हम बच्चों का भी घर है? शब्दों में कहना और महसूस करना दोनों में गहरा अंतर है। सबके मन में ये श्रेष्ठ भावना जरूर है, हम बाबा के घर में पहुंच गए हैं, लेकिन बाबा का घर ये मेरा घर है, ये स्मृति उजागर होना, पैदा होना, ये एक अलग ही बात और अलग ही अनुभव है। आप सब बाबा के घर में आए हैं, आज से हमारी क्लासेस सेवा शुरू हो रही हैं, तो बाबा के घर में आप सब बाबा के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज का विषय जितना ही सुंदर उतना ही गहरा है, जितना ही कठिन उतना ही सहज है। संगम युग पर बाबा अनेक आत्माओं में से कुछ आत्माओं को चुनते हैं। आप जहां से भी आए होंगे, चाहे गांव हो या शहर, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके गांव की, शहर की पॉपुलेशन कितनी है और उस हजारों लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में से बाबा ने मुझ आत्मा को चुना है, तो मैं आत्मा विशेष आत्मा हूं जिसको भगवान ने चुना है। और भगवान जिसको एक बार चुनते हैं फिर उसका टिकट कैंसिल नहीं करते हैं। उस दुनिया में 5 साल बाद इलेक्शंस होते रहते हैं, टिकट कैंसिल भी हो जाता है, वो खुद ही पार्टी छोड़ के भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अंतिम श्वास तक भी अगर किसी बच्चे को माया पकड़ भी लेती है तो बाबा उसके अंतिम श्वास तक भी उसको ऑक्सीजन देकर भी भरपूर कोशिश करके माया के पंजे से छुड़ाते हैं। और बहुत बार भाई बहनें महसूस भी करते हैं कि बहन जी बाबा के तो हम बने, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, समस्याएं भी आई, लेकिन बाबा ने हमें बचाकर रखा, हम बाबा की गोद में रहे। तो मैं आत्मा कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जिसको भाग्य विधाता बाबा स्वयं संभाल संभाल कर आगे ले चलते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है परिस्थिति और स्वस्थिति, शब्द तो दो ही हैं, स्थिति को अगर हम निकाल लें तो दो ही शब्द रह जाते, स्व और पर। स्व कौन है और पर कौन है? स्व मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म हूं, चैतन्य शक्ति हूं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो पर है, पराया है, दूसरा है। तो बाबा सबसे पहले हमें ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे एक दो दिन पहले मुरली में भी था, बच्चे तुम संगम युग पर हो, संगम युगी हो, संगम युग पर भगवान से मिलन मनाते हो। अब थोड़ा सा अपने भीतर जाकर पूछें, क्या मुझे दिन भर में कभी एक दो बार भी ये स्मृति आती है कि हम संगम पर हैं? अगर ये स्मृति आ जाए मैं संगम पर हूं, तो अनुभव करेंगे कि ये पुरानी दुनिया की बातें, आकर्षण, उतार चढ़ाव, इन सब से स्वतः ही पार हो जाएंगे। लेकिन पांव अगर दो नाव में है, मैं संगम पर भी हूं, मैं कलयुग में भी हूं, दो नाव है, आप नाव में चढ़े हो या ना चढ़े हो, पर सोचिए किसी नदी के किनारे पर, झील के किनारे पर दो नाव खड़ी हो और हम सोचें कि मैं अपना एक पांव इस नाव में और एक पांव इस नाव में रखूं, तो क्या होगा? क्या होगा? समझ सकते हैं ना? नाव पे चढ़ो, कितनी भी मजबूत वो बांधी हुई क्यों ना हो, वो पानी में यूं हिलेगी जरूर। जैसे ही इस नाव में पांव रखा, दूसरी पास में है, उसमें रखेंगे, दोनों यूं यूं हिलेंगी। और अगर जरा सी भी बीच में जगह बन गई तो जो दो पांव में, दो नाव में पांव रखा है, तो धड़ाम देके नदी या झील में ही डूबने का एक तरीका रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। कहीं मुझ आत्मा के साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? कभी मैं कलयुगी, कभी मैं संगम युगी बन जाती हूं। जब सोचती हूं मैं संगम युग पर हूं, बाबा मेरे साथ है, तो लगता है बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। लेकिन जैसे ही पांव कलयुग की ओर जाता है तो वो गर्म हवा, वो लू हमें लगती है, वो लू के थपेड़े हमें परेशान करते हैं। आप कहेंगे बहन जी हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, और बाबा ने भी कहा है घर गृहस्थी में रहो। बिल्कुल सही आप सोचते हैं और सही कहते हैं कि बाबा ने कहा बच्चे घर गृहस्थी में रहो, ये तो आधा महावाक्य है, इसके साथ दूसरी बात क्या बाबा ने कही? दूसरा क्या कहा? बच्चे घर गृहस्थी में रहो, लेकिन लेकिन कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहो। तो कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना है, ये बात तो हम भूल जाते हैं। लेकिन घर गृहस्थी में रहना है तो घर गृहस्थी में तो ये अनेक प्रकार की बातें आएंगी। हम अपने आप को डिटैच जल्दी से नहीं कर पाते हैं। जैसे आजकल तो भारतवर्ष में भी बड़े बड़े शहरों में कई स्थानों पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन्स हैं, उन पर एक्सेलेटर लग गए हैं, सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ती है, वो सीढ़ी जो है ऑटोमेटिक चलती है। अब कई कई लोगों को उस ऑटोमेटिक सीढ़ी पर पांव रखने में डर लगता है। जो यूथ है, आज की जनरेशन है, वो तो इंजॉय करते हैं, जैसे ही एक्सेलेटर के पास आते हैं झट से पांव रखते हैं और चल देते हैं। लेकिन थोड़े जो बीच की आयु के, बड़ी आयु के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डरते हैं, कहते ना बाबा मैं कहीं गिर ना जाऊं, इससे तो ज्यादा अच्छा सीढ़ी चढ़ जाए। तो विज्ञान ने साधन तो दिया है, आराम से एक्सेलेटर पर खड़े हो जाइए, वो सीढ़ी आपको चढ़ा के भी ले जाएगी, उतरना है तो उतार के भी ले जाएगी। लेकिन अगर चढ़ने की विधि ना आती होगी, डरते होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसका फायदा नहीं ले सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो स्थितियां पर स्थितियां आ रही हैं, उनको पहले समझ लेना है। हम सोचें ये परिस्थितियां ना आए तो आप पक्का कर लीजिए वो परिस्थितियां तो आएंगी ही, लेकिन बाबा ने मुझे एक्सेलेटर दिया है। केवल एक्सेलेटर वो सीढ़ी चढ़ने के लिए नहीं है, बड़े बड़े एयरपोर्ट पर जाएंगे अगर आप, तो आपको ज्यादा चलने की भी आवश्यकता नहीं है, एक्सेलेटर पर खड़े हो जाएंगे, वो अपने आप आपको सीधा भी यूं ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। तो बाबा ने भी हम बच्चों को एक्सेलेटर दिया है, स्वचलित सीढ़ी दी है, और वो है बाबा की याद। हम बाबा से डिटैच तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बाबा से अटैच होने की विधि हमें नहीं आती है। समस्याएं कौन कौन सी हैं, आप गिनेंगे तो आप बहुत लंबी लिस्ट बना लेंगे। कभी तन की समस्या, कभी मन की समस्या, कभी धन की समस्या, कभी संस्कार स्वभाव की समस्या, कभी संबंध संपर्क की समस्या, कभी वातावरण की समस्या, कभी ये जो दुनिया का वायुमंडल है, एनवायरमेंट है, इसकी समस्या। तो समस्याएं तो आप गिनो कितनी हैं, ढेरों ढेर हैं। लेकिन इन समस्याओं में रहते हुए हम प्रसन्न कैसे रहें? कोई सोचे मुझे ये समस्या ना आए। मान लीजिए तन की बात है, आजकल सब जगह जहां भी देखो मौसम के कारण डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है। आप में से भी कई आपके साथी भाई बहने होंगे जो एकदम लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। क्यों बहन जी? डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये तन की समस्या है। इस तन की समस्या में तो हम दवाई लेते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं, हल्के हो जाते हैं। लेकिन बाकी अगर मेरे स्वभाव संस्कार की समस्या है, मेरे मन की समस्या है, तो क्या होता है? तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपसेट हो जाते हैं। कहने में बड़ा अजीब लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जब कभी सुनते हैं। हमारे ब्राह्मण भाई बहने भी डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि मन अपसेट है। कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टकरा रहे हैं। मन और बुद्धि को हम बाबा के आगे समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो मैं समस्याओं की लिस्ट नहीं गिनूंगी, क्योंकि समस्याओं के तो हम और आप सब अनुभवी हैं, लेकिन अब तो हमें अनुभव चाहिए इन सब से ऊपर उठने का, पार जाने का। हम मधुबन में आए हैं इसलिए कि अपनी आत्मा में हम शक्ति भर के जाएं। आप पहला दिन याद कीजिए जब बाबा के घर में आए थे, किसी ना किसी ने हमको प्रदर्शनी दिखाई, म्यूजियम दिखाया, बाबा के ज्ञान का परिचय दिया, तो ये कहा था कि आप कोर्स करेंगे तो परमात्मा आए हैं नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करने और उसमें चलने की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना है। अब जरा हम अपने से पूछें, मैं सत्युगी दुनिया में चलने वाली आत्मा हूं, ये स्मृति मुझे आती है? सारा दिन में एक बार भी जिनको ये स्मृति आती है हाथ तो उठाओ कि मैं सत्युगी दुनिया में चलने वाली आत्मा हूं। कम हाथ उठते हैं ना। सचमुच अभी हम मधुबन में आए हैं तो क्या करेंगे? अपनी इस संपूर्ण स्थिति का आवाहन करें और अभ्यास करें। जैसे कोई ड्रामा करते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, वो स्टेज पर आने से पहले अभ्यास करते हैं क्या बोलना है, कौन सा डायलॉग बोलना है। अब हम आत्माएं सत्युग में जाएंगी, योग तो लगा रहे हैं, ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर प्रैक्टिकल में हम डायलॉग कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं? सत्युगी क्या विचार है? सारा दिन में हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमारा डायलॉग कौन सा निकल रहा है? प्रश्न समझ रहे हैं ना? सत्युगी डायलॉग माना, मैं देवता स्वरूप आत्मा हूं, तो देवता स्वरूप आत्मा का देखना, बोलना, कर्म करना, चलना, वो सब कैसा होगा? ये डायलॉग है, एक्शन है। सवेरे बैठकर मैंने अभ्यास किया, बाबा से मिलन मनाया, बाबा आप मुझे देवता बनाने आए हैं, और सारा दिन मेरा बोल चाल कर्म सोच कलयुगी रहा, तो बताइए मैं क्या बनूंगी, मैं क्या बनूंगी? तो अभी हम जो बाबा के घर में आए हैं, हमें दो बाबा ने हमें 2-3 साल पहले अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए कहा था, और कई बार हम पूछते हैं तो कई भाई बहन कहते हैं बहन जी हम अभी भी वो अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अभ्यास क्या सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट बैठकर करना है या प्रैक्टिकल में भी लाना है? तो स्मृति का अर्थ है अपने प्रैक्टिकल में भी उस एक्शन को लाना। मैं देवता हूं या मैं फरिश्ता हूं, तो मेरी दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क वैसा ही होना चाहिए। साकार में जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा तो क्या अनुभव पाया, बाबा से क्या लगता था, अनुभव करते थे हम सचमुच बाबा नर नारायण है। बाबा किसी को साधारण नहीं दिखाई देता था, लेकिन बाबा का वो साक्षात्कार सबको होता था। कि ये बाबा यही श्री कृष्ण है, यही श्री नारायण है। समय तेजी से बदल रहा है, विशेष रूप से सेवा में पंजाब और राजस्थान है, दोनों ही बॉर्डर एरिया के स्टेट्स हैं। बॉर्डर पर क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। ये सब समय तो तेजी से बदल रहा है, लोगों के अंदर भय भी है, दहशत भी है, परेशानी भी है, हमारा क्या सहयोग होगा? उनको हमसे ये साक्षात्कार हो, अब वो समय आ गया है कि यही मनुष्य से देवता या फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हैं, हम इनके सामने आएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति में हम स्वयं ही घबरा जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, बीपी हाई और लो हो जाता है, तो आप बताइए फिर मेरा साक्षात्कार क्या होगा? इसलिए अब वो समय भी गया, कौन सा, कि हम दिन में 5 बार 7 बार 10 बार 2 बार अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, वो समय गया। अभी समय कौन सा है? हर घड़ी अपने किसी न किसी स्वरूप में स्थित रहने का, चाहे वो आदि स्वरूप हो, चाहे अनादि स्वरूप हो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो, इससे नीचे अगर अभी तक हम आते हैं अगर हम नीचे आ जाते हैं तो फिर हम सोचें हम कैसे परिस्थिति को पार करेंगे। तो अभी हमें जो मधुबन में 5 दिन 7 दिन 8 दिन जितने दिन भी आप रहेंगे, हर श्वास में बस यही अभ्यास करना है, मैं देवता हूं या मैं फरिश्ता हूं। चाहे भीड़ 10,000 की हो या 20,000 की, चाहे 25,000 हो, कोई भी अगर आए उनको लगे ये देवताएं और फरिश्ते चल रहे हैं, केवल यहां सभा में नहीं बैठे, यहां तो शांति से बैठे हैं। आज आपकी सौगात का दिन है, अगर अभी सौगात मिलनी शुरू हो जाए फिर देखो हम किस स्वरूप में आ जाते हैं। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में, देवता स्वरूप में बैठी हूं, आएगा तो एक एक करके ही ना। जब मेरे बारी आएगी या मुझे स्थान मिलेगा, मैं फरिश्ता चल के जाऊंगा और अपनी सौगात ले लूंगा। बाबा के घर में इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, कितना मधुबन वाले आने वाले भाई बहने अपनी सेवा में तत्पर होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में होते हैं। तो आज हमारी ये परीक्षा है। माताएं मेरी बात को ध्यान से सुन रही हैं, सब माताएं सुन रही हैं, हाथ उठाओ तो, सुन रहे हैं ना? ऐसे नहीं सौगात शुरू हो गई अपने आप वहां झुंड का झुंड, लाइन की लाइन, वो सेवाधारी कहते हैं बहन जी हम नहीं इनको रोक सकते, बैठे रहिए, ये तो स्वाभाविक है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, आगे ट्रक है, आप साइकिल पर, अपने स्कूटर पर या कार में हैं, तो पहले ट्रक जाएगा या पहले आप जाएंगे? तो आप कहेंगे बहन जी ट्रक जाएगा तो जगह मिलेगी ना। ऐसे ही मेरे आगे भी जो है वो ट्रक पहले निकले तब तो मुझे भी जगह मिलेगी। स्मृति का अर्थ है मेरा एक्शन। हम सौगात लेने आते हैं, टोली लेने आते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, चाय के लिए जाते हैं, क्या हम ये एक दूसरे को साक्षात्कार नहीं करा रहे? मैं क्या बनने वाली आत्मा हूं? कोई तो मारा मारी करके चाहे दूसरे की थाली गिरे तो गिर जाए, मैंने तो अपनी ली और वो चली, नहीं, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। अच्छा, 5 मिनट बाद मिलेगा, मिलेगा तो सबको। तो आज हम इस परीक्षा में पास हो जाएंगे या फेल होंगे? जो कहते हैं पास हो जाएंगे हाथ उठाओ। झुंड नहीं बनाएंगे, सेवाधारी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब लोग बाहर वाले आते हैं, वीआईपी आते हैं, वो देखते हैं इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आर्मी वाला नहीं, कोई थानेदार नहीं, कोई एसपी नहीं, ये कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है? और कभी वो अब हमारी ये अंदर की बात देख लें तो क्या लगेगा? तो क्या लगेगा, हमने कौन सी प्रतिष्ठा कराई? बाबा ने कहा, बच्चे आप विश्व की स्टेज पर हैं। विश्व की स्टेज का अर्थ क्या कभी हमने सोचा है? जैसे मैं अभी मंच पर हूं, आप मुझे कितना देख पा रहे हैं? लेकिन मैं मंच पर हूं, मैं आप सबको देख सकती हूं, कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, यहां से सब दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को विश्व के रंगमंच पर खड़ा किया है। ऐसे ना सोचें केवल ये हम ब्राह्मणों की सभा है, पूरा विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। ये होवनहार फरिश्ते, ये होवनहार देवी देवताएं क्या कर रहे हैं? हमें ये स्मृति हर घड़ी रहनी चाहिए, मैं होवनहार देवी देवता या मैं होवनहार फरिश्ता हूं। आप अभी मेरी बात को सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ श्वास श्वास ये अभ्यास करें, आपको जो स्वरूप अच्छा लगे, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं। हमें सबसे पहले इस देह से डिटैच होना है। बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। गीता में भी यही है, हे अर्जुन, ये सब देह के मित्र संबंधी तो मरे पड़े हैं, देह के, तो मैं देह नहीं तो मैं कौन हूं? मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। चलो आप सोचेंगे, कोई कोई माताएं भाई हो सकता है ऐसा भी सोचें, बहन जी हम तो अनपढ़ हैं, हम ज्यादा तो कुछ समझते नहीं हैं, क्या फरिश्ता क्या देवता, कोई बात नहीं, आप ये तो समझते हैं हम आत्मा हैं, एक चमकता हुआ सितारा है। तीसरे नेत्र से हम काम लें, इससे देखें। तो ये है स्वस्थिति में स्थित होना, मेरी स्मृति इतनी स्पष्ट हो। लेकिन अभी तक हमारी स्मृति क्या है? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मां हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, ये स्मृति है। जब यज्ञ की स्थापना हुई, दादियां सुनाया करती थी, बाबा ने शुरू शुरू में यही अभ्यास करवाया, विष्णु चतुर्भुज, मैं स्त्री या पुरुष नहीं, क्योंकि यज्ञ में तो अधिकतर बहनें थी, भाई तो कम थे। अब बहनें क्या सोचेंगी, ये भारी चीज है, कैसे उठाएं, ये यहां से उठा के वहां कैसे ले जाएं? बाबा कहता था, तुम कौन हो? विष्णु चतुर्भुज। बहुत शुरू शुरू की बात है, मधुबन में मुझे याद है, हम भी जब छोटी कुमारियों के रूप में थे, दादी रतन मोहिनी जी ने हम कुमारियों को चतुर्भुज रास बाबा कैसे कराते थे वो सिखाई। आप समझ सकते हैं चतुर्भुज रास, मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे भी एक कुमारी खड़ी है। अब दोनों के हाथ अगर ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे, और हाथ अगर ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है तो इकट्ठे। अब सोचो पीछे वाले का मुंह तो उधर है, आगे वाले का इधर है, और वो चतुर्भुज रास में चल रहे हैं, और किसी का एक्शन ऊपर नीचे नहीं होता था। तो बाबा ने ये अभ्यास कराया चतुर्भुज रास, कर्म करते हुए ये स्मृति पक्की कराई, बच्चे तुम कौन हो, चतुर्भुज हो। आप शुरू शुरू के दादियों के चित्र देखो, बाबा जब इनको सैर करने के लिए सवेरे ले जाते थे तो भाइयों जैसी ड्रेस है, शर्ट और निक्कर पहनी हुई है। तो बात वो ड्रेस यूनिफॉर्म पहनने की नहीं है, लेकिन कॉन्शियस लेवल हमारा इतना ऊंचा उठे, हमारी कॉन्शियस में क्या है, मैं स्त्री हूं, मैं बहन हूं, मैं माता हूं, मैं भाई हूं, मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं बुढ़ी हूं, मैं बीमार हूं। हमारी बीमारियां क्यों बढ़ती हैं, कारण अनेक हैं। सबसे बड़ा कारण मैं ही सोच लेती हूं, अभी तो हमारी उम्र हो गई ना, अभी बहन जी कितना करेंगे। कई बार कई भाई बहन जिनकी उम्र 40-50 साल हो जाती है, कहते बहन जी अब हम बुढ़े हो गए। अरे सोचो, बाबा तो 60 साल का हुआ तो बाबा बाबा बना और विश्व परिवर्तन का झंडा उठा के चल दिया, और हम 60 साल में क्या सोचते हैं। कई बैठे होंगे ना 60-50 और उससे ऊपर वाले भी, हम तो अब बुढ़े हो गए बहन जी, कहाँ चला जाता है। चला जाता है, लेकिन मेरे यहाँ क्या प्रिंट हो गया है, मैं कौन हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ी हूँ। जवान कौन कौन होना चाहते हैं, जवान कौन कौन होना चाहते हैं, कोई नहीं। आज अभी से ये अभ्यास शुरू कर दीजिए, बहुत आपको अनुभव अच्छा होगा। मैं कौन हूं, मैं सचमुच एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आप कल ही मुझे सुना देंगे बहन जी 50% मेरी दर्द ठीक हो गई। दर्द बढ़ता ही इसलिए है, क्या करूं बुढ़ी नहीं, मैं कौन हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग गिर भी जाए और छोटी आयु का कोई पास खड़ा हो, वो फट से उसको उठा लेता है, उसमें शक्ति है। जब हमारे अंदर ये संकल्प आता है मैं स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तो ये प्रकृति, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ये हमें सहयोग देता है। तो पहली बात, हमारी स्मृति इतनी स्पष्ट और पावरफुल होनी चाहिए, और अपने उस वास्तविक स्वरूप का आह्वान करें। तीसरी बात, एक्चुअली ये है पहली बात, लेकिन इस पर हमारा अटेंशन नहीं है। वो कौन सी बात, वो बात है मेरी वाणी। हम हमेशा कहते हैं, आजकल कंप्यूटर एज में है, ये वाणी मेरे दिल की भाव भावनाओं का प्रिंट आउट है। आपने कंप्यूटर में जो फीड किया है वही तो प्रिंट आउट आएगा या दूसरा आ जाएगा। अब विचार कीजिए, जो देवी देवता होंगे, जो फरिश्ते होंगे, उनकी वाणी कैसी होगी। बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म वतन में मूवी है, टॉकी नहीं है, आवाज नहीं है, इशारों की भाषा है। हर कोई इशारे से ही, आप देखो जब आप बहुत अच्छे योग में बैठे होते हैं और कोई आए अचानक, आप उसको इशारे से ऐसे ऐसे करते हैं तो वो समझ जाता है, कह रहे हैं कि बैठ जाओ। उसको जल्दी है, कुछ पूछता है, आप इशारे से ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा कर देते हैं, वो समझ जाता है हाँ या ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब तक हम थोड़ा गरज के जोर शोर से बोलेंगे नहीं तो ये समझेगा कैसे। बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है व्यक्त मुरलियों में, बच्चे अंतर्मुखी बनो, एक मास के मौन का प्रोग्राम बनाओ। तो हम सोचते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब तक हमारी वाणी संयमित नहीं है, वाणी का संयम नहीं है, हम योगी नहीं बन सकते। बुरा नहीं मानना। मान लीजिए मैं अभी बाहर से आ रही हूं और कोई दो चार ऐसे लोग खड़े थे, उनसे थोड़ी हंसी की बातें की, एक दो चुटकुले सुने और सुनाए, एक दो कुछ ऐसे ही व्यंग सुने और सुनाए। अब आके मैं बैठूंगी, मैं शुद्ध आत्मा हूं तो शायद यहां से तो मैं शुद्ध आत्मा कह रही हूं, लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, वो याद आएगा अभी फलाना व्यक्ति क्या जोक सुना रहा था। अगर मुझ आत्मा को सत्युगी दुनिया में चलना है, किस किस को सत्युगी दुनिया में चलना है, किस किस को चलना है, तो आज से पक्का कर लो, मैं मौन नहीं कहूंगी क्योंकि आप भी डर जाएंगे, कहेंगे मौन तो हम नहीं रख सकते, लेकिन मुझे इशारों से ही काम लेना है। हम जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो दादियां सुनाती थी कि यज्ञ में जब हम रहे तो बाबा रात रात भर के भट्टी कराते थे, मौन में रखते थे हम बच्चों को। तो शुरू शुरू में आए तो ज्ञान योग का इतना उमंग था, जो शुरू में आने वाले संडे के दिन अपने घरों में मौन रखते थे। और सारा कारोबार कैसे चलती होगी, बच्चे छोटे छोटे होंगे, टेबल पर एक स्लेट पेंसिल रहती थी या कॉपी पेन रहता था, जो होता था लिख के दे देते थे, कोई ऐसी बात होती थी। लेकिन हमें आज के दिन मौन में रहना है। कुंज दादी हमें सुनाया करती थी, बाबा ने एक बार कहा था सब बच्चे एक मास मौन में रहो, सब शुरू में एक मास मौन में रहे। अभी कार्तिक मास आ रहा है, भक्ति में तो कार्तिक मास का भी बड़ा महत्व है। बहुत से भक्त उस मास में व्रत रखते हैं, एक समय भोजन खाते हैं। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम आधा दिन मौन में रहें, कारोबार करते रहें मौन में रहें, चाहे आपका व्यापार है चाहे ऑफिस है। दादी जानकी जी तो कहते हैं कई बार सवेरे के 4 घंटे मुझे मौन में रहना है, 4 से 8, 4 से 9 मौन में रहो। लेकिन मौन में रहने का अर्थ ये नहीं मैं तो सोई पड़ी हूं, उठी 6-7 बजे, मेरा तो मौन ही है। उठने के बाद 4-5 घंटा मौन में रहना है, मनन चिंतन करना है, बाबा की मुरलियां पढ़नी है, बाबा से मिलन मनाना है, बाबा की इस तपोभूमि पर आकर अपना अपना कुछ ऐसा प्लान जरूर बनाएं कि अभी अगले मास में, अभी तो आप जाएंगे तो दिवाली की खुशियां मनाने में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन दिवाली के बाद मुझे आधा दिन एक दिन मौन में ही रहना। और अनुभव ये कहता है कि जब दूसरे को ये मालूम पड़ता है कि आप मौन में हैं, इशारे से कोई जवाब दे रहे हैं, वो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाता है। करके देखिए, आप एक दिन मौन रख लीजिए और यहाँ एक साइलेंस का बैज या कोई भी आपका साथी बता दे इनका तो आज मौन है, तो दूसरे कहते हैं अच्छा मौन है, वो अपने आप ही धीरे बोलना शुरू कर देता है। भाई हमारा तो मौन है इसलिए मैं नहीं बोल रही, आप क्यों धीरे बोल रहे हैं? कितना सहज है अपना परिवर्तन और दूसरों का परिवर्तन, आप करके देखिए। जितनी हमारी वाणी संयमित होगी मौन होगा, वाणी के साथ हमारे भोजन का गहरा संबंध है। भले हम कहेंगे हम तो बाबा के बच्चे हैं, अब सात्विक खाना ही तो खाते हैं बहन जी, और क्या खाते हैं? सात्विक तो जरूर खाते हैं, लेकिन सात्विक के साथ हम राजसी भोजन, गरिष्ठ भोजन खाते हैं। हमारा भोजन बिल्कुल सादा, साधारण भोजन हो। आप जो भी खाते हो, वो चाहे दाल चावल खाते हैं या दाल रोटी खाते हैं, आप याद करो पहले पुराने जमाने में घरों में भोजन की कितनी वैरायटी बनती थी, बनती थी क्या? जब तक हमारे भोजन की सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो भी हमारा योग नहीं लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी है, हे अर्जुन ज्यादा खाने वाला भी मुझे याद नहीं कर सकता और कम खाने वाला भी मुझे याद नहीं कर सकता, ज्यादा सोने वाला भी मेरा भक्त नहीं बन सकता, कम सोने वाला भी भक्त नहीं बन सकता। तो हम तो दूसरों को कहते ही ये हैं कि राजयोग का अर्थ ही है संतुलन, बैलेंस। आप तीन वक्त खाते हैं, खाइए, आपका जो भोजन है वही खाइए। आप दाल रोटी खाने वाले हैं, दाल सब्जी खाने वाले हैं, रोटी सब्जी खाने वाले हैं, दाल चावल खाने, वही खाइए। लेकिन वो जो और डेकोरम है, डेकोरेशन हमारी अनेक चीजें हैं, इच्छा आपकी है, घर आपका है, खर्चा आपका है, लेकिन और मनोस्थिति भी आपकी है, अवस्था भी आपकी है। अगर आप अच्छी बनाना चाहते हैं, आप केवल 5 दिन ये अभ्यास कीजिए, मुझे बहुत सादा भोजन खाना है। सादा का मतलब घटिया नहीं, सादा का मतलब रूखा नहीं। आप खाइए, आपकी डाइट ही सबसे पहले जैसे ही आप सादा खाएंगे एकदम 50% रिड्यूस हो जाएगी, जो आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर किसी की, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वेट बहुत बढ़ रहा है। आपकी वाणी संयमित है, भोजन सादा है, तन स्वतः ही ठीक है। क्या विचार है आप सबका? राइट है ये बात या नहीं? जो कहते हैं राइट है हाथ उठा। ठीक है ना ये बात? आप करके देखिए, आज से पक्का कीजिए। मधुबन में आते हैं, यहाँ तो पूरे भारतवर्ष क्या विश्व भर के लोग आते हैं, वहाँ भोजन बनेगा। कई बार भाई बहन आके कहते हैं दीदी आज नाश्ते में तो 4 चीजें मिल रही थी, पोहा भी मिल रहा था, पराठा भी मिल रहा था, दलिया भी मिल रहा था, एक आधा और कोई ढोकला भी मिल रहा। अरे भाई, वो इतनी चीजें तो इसलिए बनी है क्योंकि अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, किसका खाना क्या, किसका खाना क्या, लेकिन मुझे थाली में क्या लेना है, मैं अपनी थाली में वो लूं और मेरी नजर मेरी थाली पे हो, ना कि दूसरे की थाली पर इसने क्या क्या लिया है। अच्छा, अरे ढोकला भी बना था, मैं मुझे तो दिखाई नहीं दिया, जरा मेरे लिए भी 4 पीस ले आओ ना। दूसरे की थाली ना देख, हमारी मम्मा थी, मैं बहुत छोटी थी, हमने मम्मा को देखा, मम्मा चलती भी थी तो ऐसा, हमने कभी नहीं देखा मम्मा की आंखें ऐसे घूम रही हों किसी को ना। तो अभी वक्त आ गया है हम अपने अंदर अपने दैवी स्वरूप का आवाहन करें, अपने फरिश्ता स्वरूप का आवाहन करें। मनुष्य अपनी दृष्टि और वाणी से ही पहचाना जाता है। अभी हम बाबा के बच्चों को अपने अंदर ये स्मृति पक्की करते हुए, हम संगम युगी हैं, मेरी दृष्टि जैसे मैं स्वयं को देख रही हूं दूसरों को नहीं, आंख बंद करके नहीं चलना है, एक्सीडेंट नहीं करना है, ठोकर नहीं लगानी है, आंख खुली है लेकिन एकदम अंदर की ओर, अंतर्मुखी। माना क्या, मैं चुप हूं, मेरा मान लीजिए मौन है लेकिन मेरी आंखें घूम रही हैं, यहां क्या है, कौन आ रहा, इसने क्या पहना है, इसने तो, ये कोई मेरा मौन नहीं है, अंतर्मुखी। इसलिए बाबा का शब्द बड़ा प्यारा सुंदर है, अंतर्मुखी। माना मेरी सर्व जो कर्म इंद्रियां हैं वो अंदर की ओर हैं, भीतर की ओर हैं, बाहर किसी भी चीज की रसना नहीं ले रही है, ना मेरी आंखें ले रही हैं, ना मेरे कान। ऐसा नहीं दो लोग बात कर रहे हैं, आज हमने फलाने का, अरे किसकी बात, उसकी, हाँ हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है। तो जब हमारी आंतरिक मनोस्थिति इतनी ऊंची होगी तो हमारी परिस्थितियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी परिस्थितियों का क्रिएटर कौन है, बुरा नहीं मानना, हम स्वयं अपनी परिस्थितियों को क्रिएट करते। आप स्वस्थिति क्रिएट करनी शुरू कर दीजिए अभी से ही। आप सबने भी सुना हुआ होगा, आगे हम लोग बहुत सुनाते थे भाषण में भी, कि ये संसार एक बहुत बड़ा गुंबद है और इस गुंबद में जैसी आवाज निकालेंगे आप, जोर जोर से हो करेंगे तो हो लौट के आएगी, कोई सुरीली तान निकालेंगे तो वही लौट के आएगी, जोर से चिल्लाएंगे तो वही लौट के आएगी। तो ये पूरा विश्व एक बहुत बड़ा गुंबद है। आजकल तो इसके ऊपर ही जितने भी बाहर वाले, जो भी आजकल के जिनको आप कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं हमारी सफलता हो, सक्सेस मिले, आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही ये लिया हुआ है। कोई भी पढ़ लीजिए, चाहे वो आप सीक्रेट पढ़ लीजिए, चाहे विन पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप जो चाहते हैं वैसा चित्र बना के रखिए, वही सोचिए, ये यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा। तो हमें तो बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है, लेकिन हम बाबा की बात को कहते हैं हम बाबा के हैं। जब कहते हैं हम बाबा के हैं, सचमुच मुझे निश्चय है, बाबा कहता है बच्चे स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजयी बनेंगे। एक एक संकल्प हमारा कैसा हो, श्रेष्ठ हो। तो बैठ के कोई कोई कहते हैं हमने 100 बार अपना स्वमान लिखा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, नहीं वो बेशक लिखी है, लेकिन हर कर्म करते हुए मेरे संकल्प कौन से हैं, वही लौट के मेरे पास आने वाला है। अब मैं काम कर रही हूं, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो मुझे पसंद नहीं है और मैं शक्ल, ये कौन, बेकार, ये एक शब्द बेकार मेरे मुंह से निकला, आप बताइए ये लौट के क्या आएगा, लौट के क्या आएगा, मुझे एक नहीं 100 बार 100 लोग ये कहेंगे ये बेकार। जब दूसरे ये कहेंगे ना ये बेकार, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये तो मुझे क्या समझते हैं बेकार। अरे भाई तूने बीज कौन सा बोया था याद तो कर, वो तो मुझे भूल भी गया। और या कहेंगे अरे मैंने तो एक ही बार कहा था ये बेकार है, ये तो मुझे 100 बार 100 लोग तैयार कर दिए, कहते हैं बेकार है। तो वही गूंज मेरे पास लौट के आने वाली है हर कर्म करते हुए। कोई कोई कहते हैं 1 घंटा शुभ भावना का दान दिया, देते हो ना, बहुत अच्छी बात है, 1 घंटा शुभ भावना का दान दिया। 24 घंटे का दिन रात है, 23 घंटे क्या किया, 1 घंटा शुभ भावना का दान दिया, बाकी 23 घंटे विचार कीजिए। तो स्वस्थिति माना, श्वासोश्वास मुझे पूरे विश्व को साकाश देना है, सर्च लाइट देनी है। अभी वो वक्त भी गया जब हम कहते थे अब आओ योग करो, योग भट्टियां करो, वो समय भी गया। अब तो वो समय आ गया है हर घड़ी ज्ञान सूर्य बनकर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर पूरे विश्व को साकाश देते ही रहना है। अगर हम पूरे विश्व को हर घड़ी साकाश देंगे, आप कहेंगे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब मैंने अपने मन बुद्धि को ज्ञान के रंग में बिल्कुल रंग लिया है, मैंने समझ लिया है आत्मिक स्थिति क्या है। समय तो कम है, आप सोचेंगे बहन जी फिर हमें बताओ ना कैसे आत्मा समझना है। हमारी एक छोटी सी किताब यहां भी होगी काउंटर पर, विदेही, पूरा नाम शायद यही विदेही है या विदेही स्थिति, उसमें अव्यक्त बाप दादा ने समय प्रति समय अशरीरी बनने के लिए क्या कहा हुआ है वो उसमें सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए। अब छोटी सी इतनी पतली सी बुक है विदेही, वो बुक ले लीजिए, पन्ने मत पढ़ना कि 100-150 पन्ना एक रात में बैठ के मैंने पढ़ दिया, एक एक लाइन पढ़ के उसका अभ्यास करना। उसमें बाबा ने बार बार कहा है बच्चे अपने को बिंदी नहीं समझ सकते, अभ्यास करो, मैं बिंदी हूं, थोड़ा सा सीधा होके बैठो, थोड़ा सा करेंगे अभ्यास, बैठिए सीधा होके, चलिए अपने भीतर, अपने हाथ का सब कुछ छोड़ दीजिए, और केवल एक ही संकल्प रखें, मैं एकदम बिंदु आत्मा मस्तक के बीचों बीच यहां विराजमान, अन्य कोई संकल्प नहीं। धीरे 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 अपने अंदर अंदर और अंदर जाओ, एकदम भीतर मस्तक के बीचों बीच मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इस तरह से सफेद लाइट करते हैं, इस तरह से अपनी स्थिति को बार बार, ऐसे नहीं मैं एक घंटा नहीं बैठ पाएंगे आप, एक एक मिनट का, बेशक घड़ी सामने रख लो, एक मिनट केवल, एक मिनट पता है कितना लंबा होता है ना, 1 से 60 तक गिनती गिनो, 1, 2, 3, 4, 60 सेकंड्स का एक मिनट है, एक मिनट बस मैं यहां चमकता हुआ सितारा, एकदम आपको ऐसा महसूस हो, मैं एकदम, ये जो बाहर की फीलिंग है ना, आपको अभी देखो, आप अभी फीलिंग आ रही है ना सब, किसी को ऐसा लगेगा ऐसा करूं कुछ ऐसा, ये बाहर की कोई फीलिंग, अपने को डायरेक्शन दें, मैं बहुत अंदर एकदम अंदर, केवल मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये अभ्यास करो। आप कहेंगे कितने दिन, ये आपकी लगन पर है, जितनी गहन लगन होगी, आप एक दिन में भी इसके अभ्यासी हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे आत्मा के जो गुण हैं उनका आवाहन करो, मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो जितना गहरा हमारा ये अभ्यास हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सहज ही सहज हम कर्म करते हुए अंतर्मुखी हैं, कर्म इंद्रियों का, वातावरण का, वस्तुओं का, पदार्थों का कोई आकर्षण नहीं है, और आत्मा हर घड़ी साकाश दे रही, जैसे लाइट स्विच ऑन हो गया तो लाइट आएगी ही आएगी, अगर पावर हाउस से कनेक्शन है तो, और अगर पावर हाउस से कनेक्शन कट हो गया तो स्विच ऑन होने पर भी लाइट नहीं आएगी, तो हमारा पहला स्विच ये है, इस देह से कट ऑफ, मैं आत्मा, ये है पहला स्विच ऑन करो, भीतर जाओ एकदम और भीतर गहराई से, डेप्थ में, मैं आत्मा। तो ये जो आजकल हम योग में बैठते हैं, मुरली की क्लास में बैठते हैं, बुरा नहीं मानना, मैं तो देखती हूँ कई बार भाई बहन बैठते बाद में हैं और पहले यूं यूं करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें ये देह खींचती है, आलस की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी अगर मैं अपना ये स्विच ऑन कर लूं, मैं एक आत्मा। तो अभी हम जो मधुबन में आए हैं, अपनी आंतरिक स्थिति को इतना मजबूत बनाए, एक तरफ आंतरिक अभ्यास, दूसरी तरफ बाहर हमारा जो एक्शन है, ऐसे नहीं, क्योंकि कई भाई बहन अब आ रहे हैं इसलिए मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूं, एक तरफ मैं आत्मा शांत स्वरूप, और अगर मुझे टोली मिल रही है, सौगात मिल रही है, तो मारा मारी नहीं, स्वाभाविक है, जो आगे हैं पहले वो आ जाएंगे, फिर पीछे वाले आ जाएंगे, जो मेरे से आगे है वो जाएगा, फिर मेरी बारी आएगी, आवाज में तो हमें आना ही नहीं है, आज यही हम सबका पेपर है, ना इकट्ठे खड़े होना है, अच्छा है आगे, अभी तो संख्या बहुत है, हमें वो दिन भी याद है आगे जब बड़ी दादियां हमें योग कराया करती थी, भठियां कराती थी और तिलक देते थे या दृष्टि दे देकर टोली देते थे, 25, 30, 40 का ग्रुप आगे बैठा भी होता था तो ये होता था पहले और ले लें, हम लास्ट में लेंगे। क्यों लास्ट में लेंगे? क्योंकि और लेते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारी बारी जब तक आएगी तब तक हम बाबा की याद में यूं बैठे रहेंगे, बाबा से दृष्टि लेते। लेकिन आजकल तो दृष्टि लेना, शक्ति लेना शायद हम भूल ही गए हैं। मीठे भाई बहनों, बाबा ने ये इतनी अच्छी विधियां बताई हैं, आप सौगात लेने की बात ना सोचो, लेकिन सौगात देने का जो बाबा ने सिस्टम बनाया है इसके पीछे है कि अपनी आत्मा में शक्ति भरो। ठीक है, जिनको जल्दी है जाओ भाई आप ले लो, तब तक बैठे हैं बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा से शक्ति ले रहे हैं। यूं तो सारा दिन सारा जीवन वापस जाएंगे, वहां भी मारा मारी है, यहां भी मारा मारी, तो आप बताइए शक्ति कब भरेंगे? आप चाहे भोजन के लिए जाएं, चाय के लिए जाएं, बाबा की याद में रहे। तो हम अगर परिस्थितियों पर विजयी बनना चाहते हैं तो अपनी स्वस्थिति को कौन सा स्वरूप देंगे? साकाश। हम हर घड़ी पूरे विश्व को साकाश दे रहे हैं, क्योंकि जो देंगे वही लौट कर आएगा। अब वो समय गया कि मैंने एक घंटा योग किया या दो घंटा योग किया, अब तो मुझे श्वासोश्वास योगी जीवन वाला बनना है। चलते फिरते मैं साकाश दे रही हूं, बस। कोई कोई बात सुनाए भी, आपका कोई मित्र दोस्त मिल जाता है, मेरे परिवार में ऐसा है, बच्चे की समस्या, आजकल ये सब समस्याएं हैं, बोलो भाई हल तो एक ही है, बाबा को याद करें, बाबा को साथी बनाएं। तो बाबा को साथी बनाकर बाबा को याद करते हुए बहुत शांति से रहे। तो अभी हम सब बाबा की याद में भी बैठेंगे और यहां से बाबा के घर से ये वरदान लेके जाएंगे, केवल मैं स्वस्थिति में स्थित होने वाली आत्मा नहीं, लेकिन मैं आत्मा कौन हूं? कौन हूं? पूरे विश्व को साकाश देने वाली आत्मा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान। बहुत से भाई बहन कहते हैं बाबा तो अभी बस कहते हैं, बच्चे तुम दिल से कहो बाबा, बाबा के दिल में बच्चे, बच्चों के प्यार एक शक्ति है। हम शब्द ले लेते हैं, बाबा प्यार दे दे कर, दे दे कर, दे दे कर हम आत्माओं को शक्तिशाली बना रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं उस समय? केवल हंस लेते हैं, ताली बजा लेते हैं। अच्छा, बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे दिल में हो, बच्चे ताली बजा के खुश हो जाते हैं, ताली बजाओ उसकी मना नहीं है, लेकिन सचमुच समझो मैं हूं बाबा के दिल में हूं, मुझे ये महसूस करना है, मुझे एक रूप होना है। भक्ति में एक शब्द है शक्तिपात, गुरु शिष्य को शक्तिपात। ये जो है ना बात कि गुरु का हाथ मेरे सिर पर हो, आशीर्वाद मिले, तो वो समझते हैं शक्तिपात हो रहा है, गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्य को दे रहा है। तो वास्तव में बाबा हमें अपनी शक्ति देता है। बच्चे, बाबा के दिल में बच्चे, अब देखो मैं हूं बाबा के दिल में, बाबा तो कह रहा है, बाबा शक्ति पात कर रहा है, शक्ति दे रहा है, मैं बाबा के दिल में। अब जो बाबा के दिल में होगा उसको समस्या माया पकड़ेगी, जा ही नहीं सकती। भक्ति में भी प्रसंग है कि एक बालक जब उसको मालूम पड़ा कि मृत्यु आ रही है, वो दिखाते हैं वो शिव की प्रतिमा से यूं जाके लिपट जाता है, तो यमदूत भी वापस चले जाते हैं और हम तो शिव बाबा के दिल में बैठे हैं, तो बताइए कौन आएगा हमें पकड़ने? तो बाबा के शब्दों की गहराई में जाकर उसकी गंभीरता को समझते हुए हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे भी, योग करेंगे, दादी जी आएंगे, योग भी कराएंगे, हमारी झोली अमृत वाणी से भी भरेंगे, लेकिन एकदम सब भाई बहन ऐसा अलर्ट होकर बैठो जो आपको भी लगे सचमुच बाबा हमें साकाश दे रहा है और हम सारे विश्व को वो सर्च लाइट दे रहे हैं। दादी जी भी आए हैं, आपको लगे बस हम दादी से वो लाइट और माइट ले रहे हैं। अभी वक्त केवल यही है, लाइट माइट लो और लाइट माइट दो, आप स्वयं लाइट स्वरूप बन जाएं और बाबा की आशाओं को पूरा करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
तेरे उड़ आए।